शांति। आप सब कितने न भाग्यशाली हो कि जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास ऐसे समय पर मधुबन में आए हो प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने। जनवरी मास ब्रह्मा बाबा की स्मृति का मास है, जो शिव बाबा का भाग्यशाली रथ बने, जिनके द्वारा स्वयं परमात्मा ने अपनी पहचान दी और सारे विश्व का परिवर्तन किया। तो ऐसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनको हम शत शत नमन करते हैं, उनका भी जितना गायन करें उतना कम है। जैसे हम मानते हैं कि परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ और साक्षात सरस्वती ईश्वर की महिमा लिखने बैठे तो भी पूरी नहीं होगी। तो जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे भगवान ने जो ज्ञान दिया उसकी भी महिमा अपरम अपार है, जिसको ही नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान के महावाक्य हैं, श्रीमद् भगवान की गाई हुई है। तो उस ज्ञान की भी महिमा अपरम अपार है। साथ ही साथ जिस धरणी पर भगवान ने अवतरित होकर ज्ञान दिया, भारत भूमि, इस भूमि की भी महिमा अपरम अपार है। और इनके साथ बढ़कर जिस तन के द्वारा प्रवेश कर अपना परिचय दिया, उनकी महिमा भी अपरम अपार है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। कई लोग ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत कुछ संशय उठाते रहे, कई यहां तक पूछते थे कि परमात्मा ने ये रथ ही क्यों चुना। तो कई बार बाबा हंसी हंसी में कहते थे कि अगर और कोई रथ चुनता तो भी यही प्रश्न उठता, यही रथ क्यों चुना। जिस भी रथ में आते उसके लिए भी यही प्रश्न उठता कि ये रथ क्यों चुना। लेकिन ये रथ चुना है तो इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है, परंतु कई लोग इस राज को न समझने के कारण अपनी राय देते रहे कि परमात्मा तो परम पवित्र है, तो किसी पवित्र मनुष्य के अंदर प्रवेश करता, कोई सन्यासी में प्रवेश करता, क्योंकि बाबा तो सन्यासी तो नहीं थे, गृहस्थी थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, दुनिया का पूरा अनुभव था उनको, कई शास्त्र पढ़े थे, बहुत भक्ति की थी, हर एक बात का उनको अनुभव था। तो ये भी पुरुष कहते हैं कि सन्यासी के तन में आते, जो कोई बाल ब्रह्मचारी सन्यासी हो उनके तन में आते थे, जिसने दुनिया का सारा अनुभव कर लिया और फिर उनको चुना, ये उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर वो गहराई देखें कि बाबा ने ये रथ ही क्यों चुना, क्योंकि परमात्मा को कोई निवृत्ति मार्ग स्थापन नहीं करना है। परमात्मा की खुद की भी कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, कितना ही बचरे वाल है वो, सारा विश्व उनकी रचना है, उनके बच्चे हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, तो पूरा संसार ही उनका कुटुंब है, उनका परिवार है। तो परमात्मा का स्वयं ही इतना बड़ा प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति है ना ये, और आदि से लेकर के अंत तक प्रवृत्ति का ही गायन है, कोई निवृत्ति का गायन नहीं है। ये संसार है ही प्रवृत्ति मार्ग, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग न हो तो संसार चलेगा कैसे। ये निवृत्ति मार्ग तो द्वापर में आया आज से केवल 1500 साल पहले, जबकि दुनिया को थमाना था, क्योंकि पवित्रता का ह्रास हो रहा था, नष्ट हो रहा था, नष्ट हो रही थी पवित्रता। और पवित्रता के आधार पर अगर आज दुनिया थमी है तो इन सन्यासियों के आधार पर है, वो तो है ऊंची बात, लेकिन संसार के आदि से नियम तो प्रवृत्ति मार्ग ही है। इसीलिए कई अपने बाबा के बच्चे समझते कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, योगी बनाएं, तो कई माता पिता कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा, लक्ष्मी नारायण ने भी तो शादी की, राम सीता ने भी तो शादी की, उनकी भी तो प्रवृत्ति थी, तो प्रवृत्ति तो उन सब की थी, तो आप ऐसे क्यों कहते हो कि हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो पवित्र रहेंगे, आपके ब्रह्मा बाबा भी तो ऐसे ही थे। तो ये एक दलील देते हैं, तर्क देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति तो शुरू से ही चली आई है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो प्रवृत्ति का एकदम तमो प्रधान स्वरूप सामने है। तो भगवान को भी प्रवृत्ति का जिसको पूरा अनुभव है उसी को ही चुनना था, क्योंकि फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को स्थापित करना था। बाबा ने अपनी प्रवृत्ति छोड़ी नहीं। प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई काम वासना में ही फंसे रहना है। प्रवृत्ति का मतलब है जिम्मेदारियां पूरी निभाना, अपने परिवार को अपने साथ ही रखा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई तो सन्यासी बन गए बाबा। बाबा की युगल, बाबा के बच्चे सब बाबा के साथ ही थे और ऐड होते गए। बाबा की प्रवृत्ति बढ़ती गई, बच्चे बढ़ते गए, एक अलौकिक परिवार बनता गया। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि लौकिक को छोड़ दिया, वो भी बाबा के साथ ही थे। कैसे, उन्होंने भी बाबा को स्वीकार किया। महाराष्ट्र के आए हैं तो महाराष्ट्र की हमारी सबसे बड़ी दादी ब्रिजिंद्रा दादी बाबा की लौकिक में बहू थी, तो कैसे बहू ने बाबा को किस प्रकार पहचाना। एक साधारण रूप में ब्रिजिंद्रा दादी बाबा को नहीं देखती थी, पहले बहू थी, बेटी से बढ़कर थी बाबा के लिए। और कैसे बाबा को पहचान करके धक से समर्पित हो गई। बस एक बाबा को ही देखा और किसी को नहीं देखा। इसीलिए बाबा तो प्रवृत्ति में ही रहे। फिर कई कहते कि अच्छा प्रवृत्ति, लेकिन एक छोटे बच्चे में आते थे जिन्होंने, जिसको दुनिया का कोई अनुभव नहीं। चलो कोई निवृत्ति मार्ग वाले में नहीं, सन्यासी में नहीं, पर एक छोटे बच्चे में आते, इतने बूढ़े के तन में आने की क्या आवश्यकता थी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे के तन में आए तो सब उनको बाबा 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 कैसे कहे, बाबा पिता। एक बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेगा या पिता मानेगा, वो अलौकिक पिता बनता है। पारलौकिक पिता तो एक परमात्मा है। तो छोटे बच्चे में तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई भी बाबा नहीं कहेगा, पिता नहीं कहेगा। फिर कहते कि भगवान ने आकर के चलो रथ लिया, साधारण था, तो कोई ऐसे करोड़पति पद्मपति अरबपति उनके तन में आते, कहे ये भी दलील देते। क्योंकि एक एक की बूंद से ये स्थापना का कार्य चल रहा है, एक एक के तन मन धन से ये कार्य चल रहा है। अगर एक ही पद्मपति अरबपति के तन में आता तो उसका सारा धन लग जाता, तो फट से स्थापना हो जाती। इतना समय नहीं लगता कि एक 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 का तन मन धन लगे। तो बाबा कहते वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, हर एक का भाग्य बनना है। अगर एक का ही सारा भाग्य बन जाता होता तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होती। इसलिए सबका भाग्य बनना है। तो सबका भाग्य बनना है तो उसके लिए तो सबका सहयोग चाहिए। एक का ही केवल मिला तो एक ही महाराजा बनेगा, पर यहाँ तो राजधानी है इसलिए वो भी नहीं हो सकता है। तो किसी सन्यासी के तन में भी नहीं, किसी बच्चे के तन में भी नहीं, किसी अरबपति के तन में भी नहीं। फिर कई कहते हैं कि एक बड़े राजनेता के तन में आ जाता, राष्ट्रपति अमेरिका का उसके ही तन में आ जाता। एक राष्ट्रपति का एक आवाज सारे दुनिया में फैल जाता है। छोटे मोटे लोगों को कौन पूछता है, छोटा मोटा व्यक्ति कुछ भी कहेगा कौन पूछेगा, पर राष्ट्रपति अमेरिका का एक शब्द बोलेगा वो दुनिया में वो फैल जाएगा कि राष्ट्रपति ने ये कहा। तो दुनिया को संदेश देना है तो ऐसे व्यक्ति के तन में आता। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद नहीं है। क्यों नोंद नहीं है? क्योंकि जो इस समय चाहे अरबपति है चाहे ये बहुत बड़े बड़े राजनेताएं भी है, इनका इस समय ये राजा ही है, इनकी इस समय राजा ही है, सतयुग में नहीं होगी। जो सतयुग के महाराजा महारानी होंगे वो इस समय साधारण है। ये बड़ा अंतर है। ड्रामा में हर एक को अपना अपना स्थान तो मिलेगा ना। जो इस समय राजाई लेते हैं या इस समय उनका बहुत बड़ा बोलबाला है, वो थोड़ी सतयुग में आएंगे। बाबा कई बार कहते हैं वहां के जो अमीर होंगे वो यहाँ गरीब, और यहाँ जो गरीब वो वहां अमीर, अंतर हो जाएगा। क्योंकि गरीबों की बूंद बूंद, एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, वो ऐसा है दाता बिल्कुल। तो इसीलिए परमात्मा ऐसे के तन में भी नहीं आएंगे जो राजनेता हो और एक की आवाज से सारे विश्व को संदेश मिल जाए। पर एक एक को संदेश देना है, एक एक संदेश वाहक बने, भगवान का दूत बने, एक एक सेवा में आगे आए, तो ये पांचों उंगलियों से ही सारे विश्व के पहाड़ को वहां कलयुग को बदल के सतयुग लाना है, सारी दुनिया को बदलना है। तो इसीलिए भगवान ने ये रथ क्यों चुना? भले वो कई तो बाबा बताते इसका ज्ञान, ज्ञान का रहस्य तो बहुत ही ऊंचा है कि वही नंबर वन आत्मा, सतयुग की प्रथम आत्मा, पहला पत्ता कल्प वृक्ष का बीज से निकला हुआ पहला पत्ता श्री कृष्ण, वही अंतिम जन्म में साधारण स्वरूप में है। और उसी साधारण स्वरूप के द्वारा परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो देखिए आज क्यों इतना सब गड़बड़ घोटाला हो गया है संसार में। न परमात्मा को पहचानते हैं, न परमात्मा के अवतरण के समय को पहचानते हैं, न किसके तन में आते हैं उसको पहचानते हैं। गीता का जो ज्ञान दाता है उसका भी नाम बदल दिया है। कारण है कि तीन बायोग्राफीज का मिश्रण हो गया है, तीन जीवन कथाओं का मिश्रण हो गया है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण। इन तीनों का जो मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया है, इसीलिए सारा सूत मूंज गया है और मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि आखिर भगवान कौन है, कब आता है, क्या कर करता है, कुछ भी नहीं जानते। बस इतना समझ रहे हैं कि अभी समय बहुत नाजुक है, धर्म ग्लानी की निशानियां उनको दिखाई दे रही है, ऐसे नहीं कि नहीं दिखाई दे रही है, चारों ओर धर्म ग्लानी की निशानियां है। क्या क्या निशानियां महाभारत में धर्म ग्लानी की दिखाई गई है, बताई गई है, वो चारों तरफ हम देख रहे हैं, उसका ज्यादा वर्णन हम नहीं करना चाहेंगे, अभी सब जानते हैं। और ये भी समझ रहे हैं कि कहां न कहां भगवान आया होगा, वो अपना कार्य कर रहा होगा या करेगा, आएगा या आया होगा, लेकिन कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं कोटों में से कोई ही मुझे पहचानते हैं, क्योंकि साधारण स्वरूप है। पर ये साधारण स्वरूप भी साधारण एकदम नहीं था। ब्रह्मा बाबा लौकिक में बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी था और एक ही जीवन में कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे नहीं कि बाबा का लौकिक पिता कोई बहुत धनवान था, वो तो बहुत साधारण व्यक्ति था, हैदराबाद सिंध के भी एक गांव में रहने वाला था, एक छोटे से वो प्राइमरी स्कूल का वो मास्टर था, बस कितनी तनख्वाह मिलती होगी उसको। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए बाबा जो कहते गांव का छोरा, वो श्री कृष्ण को दिखा दिया है गांव का छोरा। और बाबा कहते श्री कृष्ण बेचारा क्यों गांव का छोरा होगा, वो तो राजकुमार है, नंगे पैर थोड़ी कोई ऐसे गांव के छोरे की तरह घूमेगा श्री कृष्ण और गैया चढ़ाएगा। पर ये बाबा लौकिक में बच्चे रूप में ये करते थे, लेकिन बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उस बचपन की स्थिति से ही बाबा के अंदर बहुत कुछ महत्वाकांक्षाएं तो होगी, भले साधारण परिवार था, साधारण घर था, पर जितनी ही साधारणता थी उतनी ही अंदर की रॉयल्टी थी। इतनी रॉयल्टी थी कि बाबा की कभी आंख किसी जगह डूबी नहीं, कहीं बचपन से। बाबा ने चाहे शुरू से लेकर कहां तक बाबा पहुंचे, हीरो जवाहरातों का व्यापारी बने, लेकिन सब अपने परिश्रम से बने, अपनी मेहनत से बने, अपनी सच्चाई से बने, अपने दिल की लगन से बने, और उसके आधार से इतना उनको समाज में सम्मान मिला। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा ने तो कभी भी किसी द्वारा अपनी ग्लानी नहीं सुनी थी, इतना बाबा को सम्मान मिलता था। लखीराज बाबू के नाम से बाबा प्रसिद्ध जौहरी थे, सब लखीराज बाबू के नाम से उनको जानते थे। इतना उनको सम्मान कि सन्यासी गुरु भी उनको इतना ही सम्मान देते थे, राजाएं महाराजाएं उनको इतना सम्मान देते थे, अंग्रेज उनके दुकान पर आते थे वो इतना सम्मान देते थे, तो कितना ऊंचा सम्मान के पात्र बने वे अपने गुणों के आधार पर। तो अंतिम जन्म भी उनका इतना श्रेष्ठ था, तो आप सोचो, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला जन्म सत्ययुग के आदि का कैसा होगा। यहां तक कि राजाएं महाराजाएं बाबा को कहते थे कि भगवान ने बहुत बड़ी भूल की, बनाना तो आपको चाहिए था राजा, पर हमें बना दिया और आपको एक हीरों का व्यापारी बना दिया। लेकिन बाबा कहते थे भगवान तो भूल नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें जरूर कोई राज होगा। राज यही था कि अंतिम जन्म में वो सत्ययुग का राजा की आत्मा राजा नहीं होगी, भले वो ही रॉयल्टी होगी लेकिन जन्म साधारण होगा, ये एक राज है। संस्कार वही रॉयल्टी के थे, इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं था समाज में जिसने कभी बाबा के प्रति अंगुली उठाई हो कि ये ऐसा कोई है व्यक्ति, या किसी ने कुछ बुरा भला कहा हो। जितने ही धनी थे उतने ही दानी भी थे, बड़ा दिल था, बड़ा दिल था। कोई उनके द्वार पर हाथ खाली नहीं जाता था, कोई भी आता। और उतने ही बड़े भक्त थे, जो बाबा कहते हैं ये ड्रामा का राज है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो देखो, विष्णु की ही भक्ति करते थे, बाबा शिव के भक्त नहीं थे। आप ही पूज्य आप ही पुजारी का ये बड़ा राज है कि जो पूज्य था वो अपना ही पूज्य रूप का पुजारी बना, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं ही कोई ऐसा पूज्य था। और कैसे जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा को भी कुछ समझ में नहीं आया शुरू में कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बाबा तो भक्ति करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे, गीता का पाठ करते थे, नित्य करते थे, बिना एक दिन नागा के गीता के पाठ बिना नहीं रहते थे, और वो भी मुंह जूठा किए बिना स्नान पानी करने के बाद, बिना कुछ मुख में डाले पहले गीता का पाठ घर में करना फिर कुछ और काम। तो परिवार भी उनका ऐसे ही था, पिता को ही फॉलो करेंगे। और जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई ये भी उनको पता नहीं चला, गीता उठाई सुना रहे हैं और शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। लोगों को महसूस तो होता था कि कुछ अलग है, ये कोई उस रूप से नहीं सुना रहा है। और जब बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ सबसे पहले, तो और विष्णु ने उनको वरदान दिया अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो बाबा को लगा ये मैं इन जैसे कैसे हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, बस मैं इन जैसे कैसे हूं, मैं इन जैसे कैसे हूं, ये तो मेरे इष्ट हैं, मैं थोड़ी इनका, मैं तो सेवक हूं, क्योंकि दास हूं सेवक हूं यही समझते थे। मैं ही इतना ऊंचा देवता हूं, तत्त्वम का वरदान तो मिल गया। लेकिन बाबा की बुद्धि चलने लगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार शुरू में पहले होता और प्रवेशता होती तो और भी कुछ समझ में नहीं आता। बाद में भी समझ में नहीं आया, लेकिन पहले तो विष्णु का साक्षात्कार हुआ। और जब उनको पता चला कि भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है नई दुनिया की स्थापना का, और फिर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और ज्ञान उनके मुख से निकलने लगा जिसके आधार से कितनी आत्माएं आकर्षित होकर के आई और अनेकों को इतने साक्षात्कार हुए, जो आज भी बाबा ने कहा शुरू के साक्षात्कार और अब अंत के साक्षात्कार में ये फर्क होगा। शुरू के साक्षात्कार जो हुए वो हर एक को हुए, स्वर्ग का साक्षात्कार हर एक को होता था। जो भी बाबा के सामने आते थे, बाबा को ही श्री कृष्ण रूप में देखते थे। और सबसे पहला कलंक, जैसे बताते श्री कृष्ण को कलंक लगे, कहते हाँ 14 का चंद्रमा देखा तो कलंक लगे, पर वो सारे कलंक ब्रह्मा बाबा को लगे। क्योंकि जैसे शिव बाबा की प्रवेशता होती थी और शिव बाबा अपना ज्ञान सुनाना शुरू करते थे, चाहे ओम की ध्वनि ही करते थे, तो लोगों को भी शिव बाबा का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा से जब कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो पहला कलंक बाबा को यही लगा कि इसके पास तो कोई जादू है, जादू जादू है। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा, लोगों ने कहा ये जादूगर है, कोई जादू करता है, क्योंकि जो आए उनको साक्षात्कार हो। तो बाबा ने कहा हाँ शिव बाबा तो है ही जादूगर, वो उसकी जादूगरी थी, इस बेचारे को इनको क्यों जादूगर कहते, इनको तो कुछ पता भी नहीं था, ये ब्रह्मा बाबा की जादूगरी नहीं थी, ये तो बिल्कुल ऑनेस्ट अबोध थे, इन बातों में ईमानदारी से अपना सारा कार्य करते थे, कोई जादूगरी नहीं जानते थे। लेकिन शिव बाबा ने कैसे सबको आकर्षित किया और लोगों ने बाबा पर इस प्रकार उंगली उठाई, ये जादू करता है, इसके पास कोई जादू है। फिर ये एक ऐसी क्रांति फैल गई उस समय साक्षात्कारों की, जो बाबा को खुद हैरानगी होती थी, ये मेरे से इनको श्री कृष्ण के दर्शन होते, ये कैसे होते। केवल जो सामने आते थे उनको ही नहीं, लोगों को घर बैठे भी होते थे, दादी प्रकाशमणि को घर बैठे हुआ, कईयों को घर बैठे हुए और बाबा के पास आकर्षित होकर आए। कई दुखी माताएं इतनी रोने रोती रोती थी, लेकिन बाबा के सामने आई तो साक्षात्कार किया बाबा से कृष्ण का, हंसती हंसती गई। ऐसे भी बहुतों के अनुभव थे। तो ये जो जादूगरी हुई उस समय, जिसके आधार से अनेक आत्माएं आकर्षित होकर के आई, जिसको लोगों ने समझा कोई जादू है, पर वो एक क्रांति थी। इतनी बड़ी क्रांति हो गई कि ये न्यूज सारे विश्व में फैल गई थी उस समय 36 में, 1936 में, यहां तक कि अमेरिका के अंदर एक टाइम मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था कि हैदराबाद सिंध जो भारत का हिस्सा था उस समय, वहां एक दादा लेखराज है, बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी है, लेकिन उसके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है कि उनको जो देखता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। और बाबा कहता था ये मुझे, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी शक्ति है ही नहीं, साफ मना कर देते थे, पर ये फिर किसकी शक्ति है, उस शिव बाबा को तो कोई पहचानते नहीं थे। तो एक क्रांति हो गई। फिर दूसरी क्रांति क्या हुई, माताएं कन्याएं आकर्षित होकर के आई ज्यादा, वो ही थी, क्योंकि उस समय हैदराबाद सिंध में जो पति लोग थे, जो पुरुष लोग थे, उनको कहते थे सिंधवरकी, सिंधवरकी माना बड़े बिजनेसमैन, सब बिजनेसमैन थे उस समय, और उनकी बिजनेस केवल वहां ही नहीं होती थी, सारे विश्व में होती थी। अभी भी जो सिंधी हैदराबादी सिंधी है उनकी बिजनेस सारी दुनिया में है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बना बहुत जगह थी। अब तो दूसरे रूप, दूसरा रूप है, लेकिन उस समय ये बिजनेस उनकी सारे विश्व में थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सारे विश्व में करते थे, बहुत धनी थे। तो उनको कहते थे सिंधवरकी, और स्त्रियां बिचारी चार दीवारों के अंदर कैद, पत्नियों को तो कोई अधिकार ही नहीं था, स्त्री को कोई सामाजिक अधिकार नहीं था, भक्ति का भी इतना अधिकार नहीं था, ज्यादा कुछ अधिकार था ही नहीं, बस बच्चे पैदा करना, चार दीवारों में रहना और उनकी पालना करना बस, और पुरुष लोग तो दुनिया घूमते थे, ये था उस समय का माहौल, वो तो चार दीवारों में और पर्दे नशीन यही रहती थी। और कैसे जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, तो बाबा ने माताओं बहनों के अंदर एक ऐसी शक्ति भर दी, ये इनकी कमाल नहीं थी, ये शिव बाबा की कमाल थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की लौकिक जो युगल थी, दादा लेखराज की युगल, वही पर्दे में भी रहती थी। उनका हमने देखा था मुंबई में, मुंबई में ही उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो पर्दे में रहती थी, जैसे बड़ा बड़ा घूंघट निकालती थी। बाबा की बहू ब्रिजिंद्रा दादी पहले बहुत घूंघट निकालती थी, तो बाबा उनको कहते थे, नहीं बच्ची घूंघट मत निकालो, अभी ये पर्दा हटाओ हटाओ। बाबा ने हटाया पर्दा, यशोदा का भी और दादी ब्रिजिंद्रा का भी। तुम तो शक्तियां हो, शिव शक्ति हो, तो शिव बाबा ने कैसे उनको शक्ति बनाया, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करनी थी, और नई दुनिया की स्थापना के लिए बहनों को निमित्त बनाया, उनको ज्यादा साक्षात्कार हुए, तो ये भी एक क्रांति फैल गई। और तो एक तो साक्षात्कारों की क्रांति, और दूसरी कन्याएं माताएं वो झुंड के झुंड आने लगे, पुरुष कम थे स्त्रियां ज्यादा थी। और ये शिव बाबा का आदेश था कि ये माताएं कन्याएं ही इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। तो जो कहां से कहां बिल्कुल गिरी हुई, बाबा ने उनको सिरताज बना दिया, सिर पर चढ़ा दिया। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चों को सिर पर चढ़ा दिया। ये किसकी कमाल थी, बाबा को तो कुछ कोई कौन सी शक्ति ने ये कार्य कराया। ये दूसरी क्रांति थी। और तीसरी क्रांति उस समय बड़ी जबरदस्त हुई कि उन कन्याओं माताओं को ये आदेश दिया कि अब अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। तो वो छोटी छोटी कुमारियों ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। तो बाबा के पास ये शिकायत आई, अरे ये तो आपने क्या कर दिया, इतनी छोटी छोटी बच्चियों से आपने प्रतिज्ञा करवाई। तो बाबा कहते थे, ये मेरी तो शक्ति है ही नहीं, ये मैंने नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया। तो लोग क्या समझे किसने किया, वो तो इनको ही देखते थे, उनका ही आकार देखते थे। बाबा का दिखाई तो बाबा ब्रह्मा बाबा ही देखा ना, शिव बाबा थोड़ी दिखाई देता है। तो बाबा कहते थे, ये मेरी शक्ति नहीं, ये परमात्मा की शक्ति ने ये कार्य किया, नहीं तो किसी को कहो भी वो कहीं कोई माने ना माने, लेकिन सब ने ये संकल्प किया कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, क्रांति हो गई। तो बाबा ने कहा कि मुझे भी उस परमात्मा का ही आदेश मिला है, और मैंने भी अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह ही था, मुझे भी क्या पता था कि जीवन में पवित्र योगी बनना होता है। हाँ, भले सन्यासियों का संग था, शास्त्र पढ़े थे, वानप्रस्थ अवस्था का समय था, 60 साल की आयु हो रही थी, वो तो तैयारी थी, लेकिन था तो गृहस्थी ना। तो इसीलिए जब शिव बाबा ने ये आदेश दिया तो सब ने ये प्रतिज्ञा कर ली। तो बाबा ने कितना सामना किया, इतनों का विरोध बाबा ने उनका सामना किया। तो बाबा कहते थे, ये मैं नहीं कर रहा हूं। तो कई बार बाबा की मुरली में आता है, बाबा शिव बाबा को कहते, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते, बाबा आप जब तक नहीं थे तब तक तो इसका इतना सम्मान होता था, क्या नहीं लोग आदर करते थे, पर जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब से लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, इनकी ग्लानी करना शुरू कर दिया। कई बार मुरली में हंसी हंसी में ये बात आती है, बाबा कहते थे, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते, बच्चे कोई बात नहीं, आपने द्वापर युग से मेरी भी बहुत ग्लानी की है। ये न ग्लानी, सर्वव्यापी कहकर, कुत्ता बिल्ली में कह करके, पता नहीं क्या 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 भगवान के लिए कह दिया, वही सब कुछ करता, वही दुख भी वही देता है, सब कुछ वही करता, तो ये ग्लानी हुई ना। परमात्मा तो सुख का सागर है, वो क्यों किसी को दुख देगा। तो इसीलिए परमात्मा की ग्लानी की अब थोड़ी सी ग्लानी मेरे खातिर तुम खा लो, हर्जा नहीं, कोई बात नहीं। एक बार बाबा अपना प्रसंग बताते थे, एक 1962 की बात है, आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। मिसाल 62 की बात है, उस समय इंडिया और चाइना की लड़ाई लगी थी, चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर, भारत पर किया था, पर भारत इतना तैयार नहीं था जो इतनी सारे हथियार उनके पास हो, तो आक्रमण किया और थोड़ा सा भारत का टुकड़ा छीन लिया, अभी भी उसका विवाद तो चल ही रहा है, छीन लिया। और छीनने के बाद मानो उसकी जीत हुई, भारत तो उसमें हार गया और फिर विड्रॉ कर लिया। लेकिन बाबा ने, शिव बाबा ने ये उसके उस समय वाणी चलाई, बाबा ने कहा बच्चे ये क्यों ये जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हैं, इतना मर रहे हैं, बच्चे ये एक दिन आएगा आपको सारा विश्व आपका हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ये बाबा ने उस समय कहा। अभी वो तो वाक्य किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन ये पहला वाक्य था ना कि बच्चे क्यों ये लड़ रहे हैं, दे देना चाहिए, इतनी क्यों वो इतनी उसके लिए लड़ाई की। तो ये कोई गवर्नमेंट के किसी किसी के पास ये पहुंच गई है मुरली, और उन्होंने क्या कह दिया, वो कंप्लेन कर ली कि शायद ये संस्था ना वो चाइना के स्पाई हैं, चाइना चीन के स्पाई है, उनके कुछ उनको कुछ मदद करने वाले होंगे ये, तो क्योंकि उनका जो गुरु है उसने कहा कि ये क्यों तो जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई की। और वो उस समय जो थे माना प्रधानमंत्री 62 में, तो मैं समझती हूँ नेहरू जी थे या वही थे। तो क्या हुआ, बात तो इतनी बड़ी हो गई कि गवर्नमेंट ने कुछ इंस्पेक्टर को बाबा के पास भेजा, माउंट आबू में भेजा कि वहां जाके इंक्वायरी करो ये संस्था कैसी है। अब जब बाबा के सामने आए और बाबा की जो पर्सनालिटी थी, बाबा का जो उस रूप वो रूप था वो तो अद्भुत था ही। मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मैं 9 साल 1960 से 69 तक बाबा को हमने बहुत नजदीक से देखा। छोटे थे और मुंबई में रहते थे, तो मुंबई में तो बाबा हर साल आते थे, तो इसीलिए मुंबई में तो बाबा से मिलने का सौभाग्य मिला ही था, लेकिन अपनी लौकिक माँ के साथ 2-3 बार बाबा के साकार में भी मधुबन में आई थी, तो इसीलिए ये तो मेरा सौभाग्य था ही। तो वो जैसे ही वो ऑफिसर लोग आए बाबा के सामने, आए तो थे कि थोड़ा विरोध करेंगे बाबा के सामने, लेकिन जैसे बाबा के सामने आए उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा की तो क्या महान शक्ति थी, उनके आगे कोई कुछ मुख से कुछ बोल भी नहीं सका। तो बेचारे बड़े शांत होकर के बैठे रहे बाबा के सामने। तो बाबा ने उनसे पूछा, क्योंकि बाबा को तो बता दिया था कि बाबा ये इंक्वायरी करने आए हैं, तो बाबा ने उनसे पूछा बच्चे, हाँ पहले तो बच्चे बच्चे कहकर के आधा तो पिघल गए वो सुन करके क्योंकि बाबा तो हर एक को बच्चे बच्चे कहते थे, सबके लिए वो बच्चे थे, तो वो पिघल गए। फिर थोड़ा डर 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 करके थोड़ा सा उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमने सुना है कि आपने चीन के बारे में ऐसे कहा है आदि आदि, जो को थोड़ा थोड़ा बोला। तो बाबा ने तो बड़े हल्के रूप से लिया, कहा वो बच्चे वो तो जो बोलने वाला था ना वो बोल के चला गया वो बोल के चला गया। अरे कौन था बोल करके चला गया? तो क्या वो ऊपर वाला, वो ऊपर वाला, वो शिव बाबा इसके अंदर में ना बोल करके वो तो चला गया, ये तो हमने तो बोला ही नहीं है। तो मतलब फिर बात बात में थोड़ा समझाया, तो आखिर अंत में कहते हैं कि बाबा जी वो फिर आए ना ऊपर वाला, उनको कहना ऐसे दोबारा ना कहे, बस बात खत्म हो गई तो ये थी बात। कहा क्योंकि बाबा तो, परंतु वो बाद का वाक्य तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि एक दिन आएगा कि सारा विश्व ही भारत होगा, सब कुछ आपको वापस मिलना है, ये भारत विश्व पर राज्य करेगा, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। बाबा तो कितना कहते हैं भारत के लिए, यही भारत है। तो क्या है कि शिव बाबा को किसने उस शुरू में कुछ समझा नहीं, ब्रह्मा बाबा ने भी खुद में नहीं समझा कि ऐसे शिव बाबा की प्रवेशता है, परंतु ये शिव बाबा की प्रवेशता है ये कैसे पता चला, और संदेशियों के द्वारा, जो संदेशियां ध्यान में जाती थी वो बताती थी कि कैसे शिव बाबा आप में आते हैं और वाणी चलाते हैं। और गुलजार दादी सबसे प्रथम आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, उसके पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी ने भी नहीं किया था। स्वर्ग का साक्षात्कार, विनाश का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार, ये तो सबने किया लगभग, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया, और भी बहुत छोटी थी उस समय, 9 साल की तो आई थी। और जैसे ही उसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया और बाबा को बताया कि आपका संपूर्ण स्वरूप हमने वतन में देखा, वो भी एक लंबी कहानी है कि कैसे दादी गुलजार ने वो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप लाइट के आकार में देखा, तो वो पहली बार देखा बिल्कुल हजारों चंद्रमाओं की चांदनी में चमकता हुआ एक 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 दुनिया, और उसमें ब्रह्मा बाबा का वो अव्यक्त स्वरूप देखा, तो वो तो डर गई। दादी गुलजार कहते हम, मैं तो डर गई कि क्या देख रहे, क्योंकि लाइट लाइट लाइट, और बाबा को तो नीचे देखती थी, ये कहाँ देख रही हूँ मैं इनको। और वो नीचे आ गई, और नीचे आकर के उसने ब्रिजेंद्रा दादी को ही बताया कि दादी माना ऐसे मैंने ये देखा उनका बिल्कुल लाइट का आकार। तो दादी ब्रिजेंद्रा को भी उमंग आया कि क्या देखा इन्होंने, क्योंकि नया अनुभव था। तो उसने जाके बाबा को सुनाया, बाबा ने दादी को बुलाया, गुलजार दादी को, कि क्या देखा। तब दादी गुलजार ने कहा कि आपका ही वो कुछ ऐसा आपकी शक्ल थी पर बिल्कुल लाइट का आकार था। तो बाबा को उत्सुकता हुई कि मेरा ही आकार का, इसी शरीर के आकार का लाइट का आकार क्या देखा। तो बाबा ने उनको कहा कि जाओ अभी फिर से आप बैठो, और फिर से वो अनुभव हो तो उनसे पूछना कि आप कौन है, आप कौन है, ये बाबा ने उन दादी को कहा, गुलजार दादी को। तो दोबारा गई और फिर अभी श्रीमत मिल गई थी कि आप उनसे पूछो, तो जब पूछा तो उस आकार ने कहा कि मैं साकार में जो ब्रह्मा है उनका मैं संपूर्ण स्वरूप हूं, और यही साकार ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा बनना है। ये नया राज खुला यज्ञ के अंदर जो 14 साल की भट्टी थी, और उसके बाद ब्रह्मा बाबा के अंदर ये लगन लगी कि मुझे ये संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। इसलिए आप देखते हैं कैसे 33 साल में 1936 से लेके 1969 तक 33 साल में बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, क्योंकि वो लगन लग गए मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। एक तो अपना लक्ष्य बाबा को बुद्धि में था, मुझे ऐसा कृष्ण समान बनना है, मुझे श्री नारायण बनना है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट रहता था, अभी भी है हिस्ट्री हॉल में, वही ट्रांसलाइट है। तो जब भी बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठ के मुरली चलाते थे, बाबा ये कहते ये बनना है, ये बनना है, और ऊपर में श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट है। तो बाबा उस ट्रांसलाइट को देख करके कहते थे कि मैं ये बनूंगा, इतनी खुशी होती थी जैसे छोटा बच्चा बन जाते थे उस समय, इतना इनोसेंट, जिसको बाबा मुरली में कहते बाबा खगिया मारते थे, खगी माना ये जो कंधा होता है ना, तो मैं ऐसे बनूंगा, मैं ऐसे बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, तो बाबा ऐसे गद्दी पर बैठ करके छोटे बच्चे की तरह नाचते थे, माना ऐसे कंधा हिलाते थे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, इतना इनोसेंट बाबा। दुनिया का अनुभव बाबा के पास था, लेकिन शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, एक नया जन्म बाबा को अनुभव हुआ और उनकी पवित्रता तो कमाल की थी। इतने सब बच्चों के साथ रहते हुए कैसे बाबा न्यारे भी थे और प्यारे भी थे, इतनी पावन दृष्टि थी। और बाबा के अंतिम दिनों में हमने देखा कैसे बाबा न्यारे और न्यारे होते गए और न्यारे होते गए और न्यारे होते गए और न्यारे होते 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 कैसे संपूर्णता को प्राप्त किया। तो अभी हम इस 18 जनवरी को 47 साल का वो जो अव्यक्त रूप की पालना हम ले रहे हैं वो 47 साल होंगे, और ब्रह्मा बाबा का साकार स्वरूप तो 33 साल ही था और उसमें संपूर्णता को प्राप्त किया, और अब अव्यक्त पाठ बाबा का चल रहा है। अभी ये अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी हम देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, अंत के नजदीक आ रहा है, जो ब्रह्मा बाबा का हम पाठ देखते थे शुरू में और अंत में बड़ा अंतर देखा। अभी अव्यक्त बाप दादा का भी हम ये अंतर देख रहे हैं, बहुत इसका विस्तार है। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो भाग्यशाली रथ रहे, कितने लोगों ने उनको पहचाना सचमुच, जो 1967 में 68 में आए ज्ञान में, सभी तो मधुबन आए नहीं थे, भले 65 66 67 मना 65 से 69 तक ज्ञान में भी थे, लेकिन मधुबन नहीं आए तो बाबा को साकार में नहीं देखा था। और जैसे पता चला कि बाबा अव्यक्त हुए, आप सोच सकते कितना पश्चाताप किया होगा कि हम ज्ञान में भी आए तो भी हमने साकार में बाबा को नहीं देखा। और जिन्होंने बाबा को पहचाना वो तो एक घड़ी भी रुक न सके, और कैसे बाबा से मिलन मनाने आते थे, तो मधुबन तपोभूमि वरदान भूमि ये पावन भूमि जहाँ ब्रह्मा बाप ने तपस्या की और तपस्या करके विश्व परिवर्तन की नींव डाली। तो ऐसे मधुबन में आप सभी पधारे हो जहाँ पर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ये नारा यहाँ गूंज रहा है, जिसके आधार से सतयुगी दुनिया की नींव पड़ रही है। और अभी भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हमसे अलग नहीं है, गुलजार दादी माध्यम जरूर है और वो भी बाप समान बनती जा रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं जैसे ही बाप दादा की प्रवेशता होती है, पहले तो अंतर का पता चलता था कि बाप दादा की प्रवेशता हुई है, अभी तो वो भी अंतर समाप्त होने लगा। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे पहले अंतर का पता चलता था, धीरे धीरे जैसे ब्रह्मा बाबा बाप समान बनते गए वैसे अंतर का भी अंतर भी समाप्त होने लगा, पता ही नहीं कि शिव बाबा इसमें है या नहीं है, सदा जैसे थे ही थे, यही अनुभव होता था ब्रह्मा बाबा से। अभी वही अनुभव हम गुलजार दादी से करते हैं, कुछ पिछले सीजन के अंत से और इस सीजन में भी हम देख रहे हैं, बाप दादा कब आए पता भी नहीं चलता, दृष्टि खुली है बाबा की, जैसे शुरू से ही दृष्टि बच्चों को बाबा दे रहे हैं, यही अनुभव होता है। पहले तो फिर भी अव्यक्त बाप दादा की आवाज बदलती थी, अब वो भी नहीं बदलती, क्यों? क्योंकि दादी जी भी बाप समान ही हो गए, यही अनुभव करते हैं सचमुच, हम दादी जी को भी अभी बाप समान अनुभव करते हैं। और बाप दादा गए कब ये भी पता नहीं चलता है, पहले तो पता चलता था, तो जैसे अभी हम गुलजार दादी का अनुभव कर रहे हैं वैसे ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव करते थे। बाबा के सामने बैठे और बाबा से मिल रहे हैं, बातें करनी है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबा की इतनी कशिश होती थी। बाबा कैसे देर से न्यारे रहते थे, बाबा के सामने मुझे ये कहना है, बाबा को ये कहना है, ये कहना है, अंदर में बहुत सोच के आते थे, और बाबा के सामने आए और कुछ मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि सब भूल जाते थे, क्योंकि बाबा की स्थिति इतनी ऊंची देखते थे। दादी प्रकाशमणि का भी यही अनुभव किया, कैसे दादी जी के सामने जाते थे। पहले तो दादी जी इतना प्यार से मिलती थी, हर बात में साथ था, लेकिन धीरे धीरे कैसे दादी की स्थिति भी इतनी ऊंची होती गई होती गई होती गई, जो हम महसूस करते थे कि दादी जी के सामने कुछ भी कहने को दिल नहीं कर रहा, बस दादी की दृष्टि लेते रहे, दृष्टि लेते रहे, यही दिल होती थी, शक्ति भरते रहे, क्योंकि हमारी बातें तो इतनी छोटी छोटी होगी, दादी की स्थिति तो इतनी ऊंची ऊंची, बाबा की स्थिति इतनी ऊंची ऊंची, और हमारी क्या बातें होगी जो हम बाबा से करना चाहेंगे, छोटी छोटी बातें, तो क्या ये बातें इतनी ऊंची स्थिति के सामने कुछ शोभती भी नहीं, ऐसे अनुभव होता था। तो ब्रह्मा बाबा के सामने भी, दादी जी के सामने भी, अभी भी अव्यक्त बाप दादा के सामने हम देखते हैं, बस उनकी स्थिति भी न्यारी होती जा रही है। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि समय समाप्ति पर आ रहा है। बाबा नए बच्चों को देख करके कहते थे, आप लेट आए हो पर टू लेट नहीं आए हो, टू लेट नहीं हो। तो मैं सोचती थी टू लेट कब होगा, तो अभी महसूस हो रहा है कि अभी भी जो नहीं आएंगे उनके आगे टू लेट का बोर्ड लग सकता है। समझ गए ना आप, इसलिए आप आए हो फिर भी बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो। इसमें जो पहली बार आए हैं वे हाथ खड़ा करें, इस संग पहली बार देखो कितने आए हैं, बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो। तो इतना भाग्य अपना आप समझना, जो स्वयं भगवान के सामने आप डायरेक्ट वरदान लेंगे। इसीलिए अभी तो खुला पीस ऑफ माइंड चैनल पर, पीएम टीवी पर दे रहे हैं, ताकि पता नहीं कोई वंचित न रह जाए, सबको पता चल जाए कि भगवान इस धरा पर आ गए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, बड़े गुप्त रूप में कर रहे हैं, और कार्य संपन्न होगा, सब घर जाएंगे। लड़ाई रुकी हुई है, किसके लिए रुकी हुई है? कल भी हम सुन रहे थे न्यूज, भी बहुत डिटेल है उसका, कि एटम बॉम्ब का वो कोई धमकी दे रहे हैं। अब वो धमकी देना माना विनाश के नजदीक है, ये महाभारत की लड़ाई की अंतिम लड़ाई के नजदीक, तीसरे विश्व युद्ध के नजदीक। और यहाँ हम संपूर्ण होते गए, कर्मातीत बनते गए, लड़ाई शुरू होगी, बाबा की पढ़ाई पूरी होगी। कल भी बाबा ने कहा पढ़ाई और लड़ाई इनका आपस में संबंध है, वो लड़ाई कब लगेगी? जब पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई कब पूरी होगी? जब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो सभी तैयार है ना, एवर रेडी है कि नहीं है? जो समस्या में एवर रेडी है हाथ उठाएं। तो एवर रेडी है क्योंकि अचानक होना है, जो कुछ होना अचानक होना है, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए जो कल करना सो आज, आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। इसीलिए अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।